SBS हिंदी।
ऑस्ट्रेलिया 118 सालों से भी अधिक समय से एक स्वतंत्र देश है, लेकिन इस देश की नागरिकता ये एक नया विचार है। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन नागरिकता की 70वीं जयंती के अवसर पर एक नज़र इस पर कि ये कैसे और क्यों लागू की गई। ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बना 1 जनवरी 1901 के दिन, जब ब्रिटिश संसद ने एक बिल पास किया और 6 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज को अपनी तरह से एक स्वतंत्र देश की तरह काम करने का अधिकार दिया। लेकिन फिर भी 5 दशक तक, यानी 26 जनवरी 1949 तक, जिस दौरान 2 विश्व युद्ध भी हो गए और एक बहुत बड़ी मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन भी आया दुनिया में, तब तक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन नागरिक नहीं जाने गए। 7 लोग जो चेकोस्लोवाकिया, स्पेन, डेनमार्क, ग्रीस, फ्रांस, यूगोस्लाविया और नॉर्वे से थे, ये वो पहले 7 लोग थे जिन्हें नागरिकता मिली। 3 फरवरी 1949 के दिन उस समय के प्रधानमंत्री बेन शेफली के सम्मुख इन सब ने अपनी पूर्व की नागरिकता छोड़ी और ऑस्ट्रेलियन नागरिकता के लिए शपथ ली। नॉर्वे के थील मार्सरेड इनमें से एक थे और 1949 में टीवी रिपोर्ट इस तरह से थी।
I, Thiel Marstrom,
swear by Almighty God,
swear by Almighty God,
that I will be faithful,
that I will be faithful,
and bear true allegiance,
and bear true allegiance,
to His Majesty King George the Sixth,
to His Majesty King George the Sixth,
and that I will faithfully observe,
and that I will faithfully observe,
the laws of Australia,
laws of Australia,
and fulfil my duties,
and fulfil my duties,
as an Australian citizen,
as an Australian citizen.
21 दिसंबर 1948 के दिन फेडरल संसद ने ऑस्ट्रेलियन नागरिकता एक्ट को पास किया। इस एक्ट में विवरण दिया गया था कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एक ऐसा सामूहिक गठबंधन है जो सभी ऑस्ट्रेलियंस को उनकी विभिन्नता का सम्मान करते हुए उन्हें परस्पर आपसी अधिकार और अनुग्रहों के साथ जोड़ता है। 1949 से पहले ब्रिटिश एम्पायर द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लोगों के लिए सब्जेक्ट्स शब्द का प्रयोग होता था, उन्हें ऑस्ट्रेलियन नहीं कहा जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के प्रोफेसर ब्रायन जिनिगल कहते हैं कि 1949 के जो बदलाव थे वो बस एक कानूनी तकनीकी थी, क्योंकि आप क्वीन के प्रति नागरिकता लेते थे, ऑस्ट्रेलिया की नहीं।
Acts like the Naturalisation Act and so on, you became a citizen of the Queen. You didn't become a citizen of Australia, although essentially that's what it meant. And Australia, of course, being very much a country of the British Empire. So you could say that Australians were citizens, really, from 1901. And the Citizenship Act in 49
प्रोफेसर जिलिगन कहते हैं कि औपचारिक रूप से नागरिकता लेना ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य से मोहभंग जैसी बात थी और उस समय राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता भी महसूस होने लग गई थी।
Victorians or Tasmanians or New South Welshmen, but of Australians. And so this was, you might say somewhat belatedly, but this was a formal recognition of that fact, that now they were Australian citizens and this would be recognised in the Act.
विश्व युद्ध और डिप्रेशन के समय कम स्तर पर माइग्रेशन हुआ था, फिर 1940 से देश में नए प्रवासी आने शुरू हो गए। प्रोफेसर गिलिगन कहते हैं कि वो प्रवासी जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने, उन्हें अपनी पूर्व की नागरिकता छोड़नी पड़ी थी ताकि वो इस नए देश के प्रति राजभक्ति पक्की कर सकें, उसके प्रति सच्चाई से समर्पित हों।
The idea was that if you're a citizen of country A, a citizen of Australia, you should have total allegiance to that country. And if you were a citizen as well of another country, then you would have a divided allegiance. So when it came, and I suppose this was fresh in people's minds, when it came to war and serving your country, if you were also a citizen of the another country that was on the other side, then there would be problems and you would have dual allegiance to those countries, and you would have sections of the population that you couldn't be trusted and so on.
थियाई मास्टरेट जो पहले ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने थे 1949 में, वो नॉर्वे के थे. वो सिंगापुर की जेल में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से सजा काटकर 1948 में ऑस्ट्रेलिया आए. कुछ समय नॉर्वे में रहने के बाद वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए और उन्हें तस्मानिया में एक प्लाईवुड मिल में नौकरी मिल गई. 86 वर्ष की आयु में तस्मानिया में ही उनकी मृत्यु हुई. उनकी बेटी वाल बस्पी अब भी तस्मानिया में रहती हैं. वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उनको एक नई शुरुआत करने का मौका मिला और चेंगी जेल की कटु यादें और नॉर्वे के कठोर मौसम से भी राहत मिली. उन यादों को वो भुला सके.
And he was offered a job to come to Tasmania to manage the plywood mill, which is the job he had in Malaya as a plywood mill manager. And so he accepted that, and we came to live in Somerset, which is not far away from Wynyard, about 5 minutes drive from Wynyard.
सुश्री बस्पी कहती हैं कि उनके पिता ने सिंगापुर जेल के अनुभवों के बारे में बहुत ही कम बात की, लेकिन अपने संस्मरण में वो सभी कुछ लिखा. वो बताती हैं कि उनके पिता ऑस्ट्रेलिया को बहुत अधिक चाहते थे.
He was very, very proud to become an Australian. He really wanted to. And he's always been very much an Australian. He loved his country that he was of birth, but Australia was his great love, and he loved being here and always very grateful. But it's a wonderful country, isn't it?
SBS के लिए इस अंश को तैयार किया तारा कोसलेटो ने, प्रस्तुति अनीता बरार की.
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए.